माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवदधरी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवदधरी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चहरी, तीरा बन चहरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, तीरा बन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचारी अष्टोत्तर शस्त्री श्रीमदेवायंग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सिखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. तो आज प्रबोधिनी एकादशी है। हर एकादशी को जैसा नियम है प्रभुपाल लीला में से पाठ करने का, तो हम प्रभुपाल लीला में से पाठ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भीष्म पंचक भी शुरू हो चुका है। भीष्म पंचक का मतलब क्या है कि कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन, तो इसको जो है पंचक कहते हैं। पंचक का मतलब 5 दिन। लेकिन भीष्म जी का नाम कैसे जुड़ गया इसमें, तो इसकी कुछ घटना है जिसे हम सुनेंगे। भीष्म पंचक कहलाता है। पंचक का तो मतलब 5 दिन और कार्तिक के महीने के 5 दिन। तो कार्तिक के महीने के 5 दिन ये कब से शुरू होते हैं? एकादशी से। तो वैसे आज से शुरू होना चाहिए पंचक, लेकिन जो कल एकादशी थी उसमें दसवीं तिथि मिली होने के कारण कल एकादशी का उपवास नहीं किया गया। तो आज वैसे द्वादशी है, इसलिए लिखा है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। तो बहुत पवित्र है, आज के दिन उपवास करना बहुत फलदायक है। लेकिन पंचक शुरू हो चुका है कल से, क्योंकि पंचक का मतलब 5 दिन, और वो जो है जरूरी है कि वो कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन होने चाहिए। तो पंचक व्रत जो है ये बहुत कठिन भी है और साथ साथ भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान की प्राप्ति तो सामान्य रूप से कई भक्तों को होती है, लेकिन विशेष प्राप्ति पंचक व्रत की, पंचक व्रत के द्वारा भगवान की कुछ विशेष प्राप्ति होती है जो कि सामान्य बात नहीं है। तो ये जो रहस्य है, ये भीष्म जी ने पूछा भगवान कृष्ण से। जब भगवान कृष्ण दूत बनकर के आए, कहाँ? हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में। तो पांडवों के जो है भगवान दूत बने, भगवान के, भगवान पांडवों के मित्र बने, उनके बंधु और उनके संबंधी हैं, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। पांडवों के स्वामी भी हैं, पांडवों के सेवक भी हैं, दूत भी, सारथी भी, सखा, सब कुछ पांडवों के। और इतने जो है ना पांडवों से इनका जो है घनिष्ठ संबंध है कृष्ण का, कि उनके साथ सोते हैं, उनके साथ खाते हैं, चलते फिरते, जागते, हंसी मजाक करते हैं और गंभीर बातें भी करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, सब कुछ पांडवों के साथ है ना। तो भक्तों की तो कोई कमी नहीं है इस पृथ्वी में। कितने भक्त हैं भगवान के, पांडवों जैसे भक्त तो नहीं हो सकते हैं। तो भीष्म जी ने ये रहस्य पूछा कृष्ण से, जब कृष्ण ने मना कर दिया कि वो किसी के घर नहीं जाएंगे। यहाँ जब कौरवों की सभा में आए भगवान, तो विदुर जी के घर ठहरे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं और किसी के घर जाऊंगा ही नहीं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे भी घर को पवित्र करो, तो भगवान ने सबको मना कर दिया। और कारण क्या बताया कि द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था, किसी ने विरोध नहीं किया। भगवान ने कहा किसी ने विरोध नहीं किया, द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था एक व्यक्ति से जिन्होंने विरोध किया, कौन? विदुर जी। इसलिए विदुर जी के घर में ठहरे भगवान, और किसी के घर नहीं ठहरे। भगवान ने कहा किसी ने विरोध नहीं किया द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था, इसलिए मैं किसी के घर नहीं ठहरूंगा, है ना। तो फिर भीष्म जी ने भगवान से जो ना अलग से ये रहस्य पूछा कि क्या कारण है पांच पांडव और द्रौपदी से आपका इतना जो निकट संबंध है, इसका कारण क्या है, इसका क्या रहस्य है? तो भगवान बताते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में क्या थी। वैसे ब्रह्म विवर्त पुराण में कुछ और भी जानकारी है द्रौपदी के बारे में, और वो क्या है कि भगवान के साथ जब सीता जी थी और रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए आ रहा था, तो भगवान सीता जी से कहते हैं कि रावण तुम्हारा अपहरण करने आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारा अपहरण क्या, तुम्हें छू भी नहीं सकता। और छोड़ने की बात क्या, तुम्हें देख भी नहीं सकता है गलत नजरों से, वो तो भस्म हो जाएगा, तो फिर मेरी लीला कैसे होगी? हैं, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम अग्निलोक में जाओ। तो भगवान ने जो है ना सीता जी को अग्निलोक में भेज दिया, और अग्निदेव ने सीता जी की छाया से एक दूसरी सीता बनाई और राम के साथ बैठा दी। और ये जो रहस्य लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, लक्ष्मण जी उस समय कुछ कार्य से जंगल में गए थे लकड़ी लेने या कुछ, तो लक्ष्मण जी को भी रहस्य पता नहीं चला। और रावण ने छाया सीता का अपहरण किया, और बाद में फिर जब रावण का वध भगवान करते हैं और फिर वो छाया सीता आती है भगवान राम के सामने, तो राम जो है चरित्र में संदेह करते हैं, ये तो सब लीला थी। और छाया सीता अग्नि में प्रवेश करती है, तो उस समय अग्निदेव ने फिर असली सीता ला करके राम को दे दी कि ये पवित्र है, है? और छाया सीता को दूर जंगल में छोड़ दिया, एकांत जंगल में छाया सीता। तो वो छाया सीता फिर तपस्या करती है और शंकर जी प्रसन्न होते हैं और शंकर जी कहते हैं वर मांगने के लिए। तो उसने जो है, उसका कोई पति नहीं था, तो उसने फिर 5 बार शंकर जी से कहा, क्या? पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही। तो शंकर जी हंसे और कहते हैं कि तूने 5 बार कहा है पतिम देही, तो उसको 5 पति दूंगा। तो शंकर जी विनोदी स्वभाव के हैं, तो हंस करके बोले तुझे 5 पति दूंगा मैं। तो फिर अगले जन्म में वो जो है मथुरा में, मथुरा के जो राजा थे उनकी भोग पत्नी बनी ये द्रौपदी। तो ये जो रहस्य है ये पद्म पुराण में है। अब ये मैं दोनों कथाओं को जोड़ रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, अब वहां से फिर जो है इतनी लिखा है कि वो फिर अगले जन्म में द्रौपदी बनी शंकर जी के वरदान से, लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि द्रौपदी पिछले जन्म में ये थी। तो हम दोनों कथाओं को जोड़ने के लिए फिर ये मान रहे हैं कि छाया सीता जो है अगले जन्म में मथुरा के राजा की भोग पत्नी बनी। तो भोग पत्नी का कार्य क्या है? सभा में नृत्य करना और राजा का मनोरंजन करना। तो उस समय ये जो 5 पांडव थे ये 5 ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, हैं? और साथ साथ रहते थे और संगीतज्ञ थे, बड़े निपुण संगीतकार थे। तो इनकी इच्छा हुई कि राजा को हम अपना संगीत जो है सुनाएं और प्रदर्शन करें राजा के सामने। तो उस रास्ते पर वो लोग जो है अपना संगीत बजाने लगे जो रास्ता राजा के महल की ओर जाता था। तो रास्ते में जो जाते थे राजा के महल में, तो वो देखते थे इन संगीतकारों का और इनका संगीत भी सुनते थे। तो राजा को सूचना मिली, तो राजा ने इनको बुलाया। तो ये जो 5ों जो ब्राह्मण थे ये जब सभा में गए राजा की सभा में, तो जो द्रौपदी थी ना, उसका जो भी नाम था उस पिछले जन्म में, 5 पांडवों का भी अलग अलग नाम था, अभी तो मैं इसी नाम से ही मतलब संबोधन करूंगा। तो इन्होंने द्रौपदी को देखा, वो नृत्य कर रही थी, संगीत बजा रही थी, तो आकर्षण हुआ। और द्रौपदी ने, ये आज के दिन है, ये आज के दिन की बात है कि द्रौपदी ने जो है इनको इशारा किया कि पास में ही विष्णु मंदिर है, रात में मिलना है वहां पर। तो आज की जो रात है, यानी ये पहली रात थी एकादशी की, अगर इसको 5 दिन माने, एकादशी से अगर 5 दिन माने, तो पहली रात थी जो युधिष्ठिर हैं वो गए विष्णु मंदिर में और द्रौपदी ने नृत्य किया रात भर, और इन्होंने जो है रात भर संगीत बजाया भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी रात में जागरण हो गया, हालांकि आकर्षण था एक दूसरे से, लेकिन विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो संगीत बजाते रहे और वो जो है नृत्य करती रही। और उन्होंने देखा कि वहां पर मंदिर में एक महात्मा बैठे हुए हैं, साधु महात्मा, उनमें कोई आकर्षण नहीं है, द्रौपदी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वो जो है ना भगवान के भजन में बैठे हैं, वो भी रात भर जाग रहे थे। और पंचक की विधि में क्या होता है, बहुत कठिन विधि होती है, 5 दिन और 5 रात बिल्कुल जागना सोना नहीं, और पहले दिन के अंत में थोड़ा सा गोबर लेना केवल सवेरे, फिर दूसरे दिन सवेरे थोड़ा सा गोमूत्र लेना, तीसरे दिन सवेरे थोड़ा सा दूध लेना, और चौथे दिन सवेरे थोड़ा सा दही लेना, और पांचवें दिन सवेरे थोड़ा सा घी लेना, यानी पंचगव्य। पंचगव्य का सेवन करना है पांच दिन लगातार, थोड़ा थोड़ा सवेरे के टाइम। तो युधिष्ठिर जो है उस महात्मा को देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं उस महात्मा से। तो उस महात्मा ने जो है थोड़ा सा गोबर लिया, थोड़ा सा गोबर खाया, तो युधिष्ठिर ने भी वो उनकी देखा देखी थोड़ा सा गोबर खाया, और देखा कि द्रौपदी में मतलब उनका कोई आकर्षण नहीं है, तो उन्होंने भी द्रौपदी से अपना आकर्षण छोड़ दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब दूसरी रात में भीमसेन आए विष्णु मंदिर में, उन्होंने भी संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और वो देखा कि वो महात्मा हैं, वो बिल्कुल निर्विकार हैं, तो प्रभावित हुए भीमसेन भी। और अगले दिन सवेरे थोड़ा सा उन्होंने गोमूत्र लिया, उन्होंने भी गोमूत्र लिया, और द्रौपदी से मन को हटा करके वो भी तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में। फिर तीसरी रात में अर्जुन आए, तो उन्होंने विष्णु मंदिर में संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और महात्मा को देखा निर्विकार हैं, और सवेरे उन्होंने थोड़ा सा दूध लिया, तो अर्जुन ने भी थोड़ा सा दूध लिया और चले गए जंगल में तपस्या करने। फिर चौथे दिन नकुल आए विष्णु मंदिर में, रात भर संगीत बजाया, द्रौपदी ने नृत्य किया, और महात्मा की जो है अनुकृति में उन्होंने भी थोड़ा सा दही लिया और चले गए जंगल में तपस्या करने। और पांचवीं रात में सहदेव आए, उन्होंने भी रात भर संगीत बजाया और द्रौपदी ने नृत्य किया, और सवेरे महात्मा ने थोड़ा सा घी लिया, उन्होंने थोड़ा सा घी लिया और चले गए। तो इस प्रकार से जो पंचक है वो पंचक व्रत कहलाता था, भीष्म पंचक अभी नाम नहीं पड़ा इसका, पंचक व्रत था। तो ये पंचक व्रत अनजाने में ही द्रौपदी और पांच पांडवों के द्वारा हो गया। रात भर जागरण भी हुआ भगवान की प्रसन्नता के लिए, कीर्तन और नृत्य हुआ। तो इस तरह से जो है इस व्रत के प्रभाव से, हालांकि हुआ था ये अनजाने में, कुछ समझे नहीं थे कि ये ऐसा कुछ नियम है, कोई ऐसा व्रत है, लेकिन अगले जन्म में फिर जो है ना ये पांचों ब्राह्मण क्या हुए, पांच पांडव हुए, और ये जो द्रौपदी है ये इनकी पत्नी हुई। और भगवान भीष्म जी को रहस्य बताते हैं कि ये रहस्य है कि पंचक का जो है इन लोगों ने जो व्रत किया था, इस कारण से मैं इनके इतने ज्यादा निकट हूं, इतना ज्यादा इनसे प्रेम करता हूं। तो फिर भीष्म जी से भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो तुम भी ये पंचक व्रत करो, और इससे जो है ना आगे चल करके ये पंचक कहलाएगा भीष्म पंचक, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो भीष्म जी ने पंचक व्रत किया, भगवान के कहने से भीष्म जी ने पंचक व्रत किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान फिर उनके मरण शैया पर क्या करते हैं, 56 दिन लगातार भगवान खड़े रहते हैं उनके भीष्म जी के सामने। कितनी कृपा भगवान की। ये पंचक व्रत का जो ना ये फल था कि भीष्म जी पर भगवान ने इतनी कृपा की कि जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, भगवान उनके पास खड़े रहे, सेवक की तरह उनको दर्शन देते रहे। तो ये जो है पंचक की जो विधि है वो मैंने बताई। तो ये कार्तिक महीने के पांच जो अंतिम दिन हैं ये बहुत ही पवित्र होते हैं। कार्तिक में कोई नियम बनाता है उनका पालन करता है तो कार्तिक 12 महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र है ही है, उसका फल बहुत ज्यादा होता है। और ये पांच दिन जो है ना जो अंतिम है कार्तिक के, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादा पवित्र होते हैं। कोई व्यक्ति में और नियमों का पालन कर सकता है और कुछ श्रवण कीर्तन कर सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाल लीलामृत से, अभी चल रहा है सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ की स्थापना, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ की स्थापना कैसे हुई सैन फ्रांसिस्को में, बड़ी प्रसिद्ध घटना। श्याम सुंदर की पत्नी मालती को किसी स्टोर से जो है गुड़िया मिली, तो एक गुड़िया जगन्नाथ की गुड़िया ले आई पुतली, और प्रभुपाद जी को दिखलाया। वही एक इंच दो इंच की पुतली थी, और प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और फिर बताया कि जगन्नाथ जी हैं, और फिर वो तीनों ले आए। और सौभाग्य से मालती के पति ही जो श्याम सुंदर थे वो बड़े ही थे, तो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया तुरंत उन्होंने जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलि सुभद्रा के, जो उसी अनुपात में बड़े बड़े विग्रह तैयार कर दिए। अब ये दिन है 26 मार्च का, 1967 होगा मेरे ख्याल से, 1967 26 मार्च लिखा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, जिस दिन प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं और उत्सव मनाते हैं शाम को। शाम को मतलब चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय पर जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के दिन मार्च 26 को प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की बेला में सब भक्त मंदिर में एक साथ रहेंगे। ये सवेरे का टाइम है। भगवान चैतन्य के विषय में पढ़ेंगे और कीर्तन करेंगे, और संध्या समय भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह होगा। जिस समय गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, चंद्रोदय तक व्रत रखने के बाद वे प्रसाद से अपना व्रत समाप्त करेंगे। जब उस दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद मंदिर में गए तो उन्होंने भक्तों द्वारा की गई तैयारी देखी। विग्रह के लिए नई वेदी कमरे के पिछले भाग में, जिसके ऊपर पहले प्रभुपाद के बैठने की जगह थी, बनाई गई थी, और उनके बैठने का स्थान अब कमरे में दाईं ओर दीवार से सटाकर बना दिया गया था। अपने स्थान से वे भगवान जगन्नाथ के विग्रह को आसानी से देख सकते थे। वेदी रेड वुड का एक साधारण पटरा था, जो जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर दो मोटे लकड़ी के स्तंभों पर टिका था। विग्रह के स्थान के ऊपर एक चंदोवा टंगा था। वेदी के नीचे हरिदास कृत एक चित्र रखा गया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ कीर्तन करते हुए नाचते दिखाया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने ऐसा जो है दृश्य बनाया है जगन्नाथ जी का, जैसे कि रथ में सवार हूं, क्योंकि 7 फुट ऊंचा आल्टर बना है, और उस आल्टर के नीचे जो है चैतन्य महाप्रभु का चित्र, जो कि भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और हरिदास प्रभुपाद के शिष्य हैं। देखो कितना आश्चर्य है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हुए नाचते हुए जो चित्र बनाया, तो वो वहां पर लगा दिया जगन्नाथ जी के नीचे। चित्र के पृष्ठ भाग में मद्रासी कपड़े का पर्दा था। चित्र के नीचे जमीन से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर एक ताक था, जिस पर मोमबत्तियां रखी थी, और जिसका इस्तेमाल बाद में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले उपहारों के लिए किया जाएगा। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया, नित्य की भांति उन्होंने कीर्तन कराया, तब भक्तों के साथ जप का एक चक्र पूरा किया। तो प्रभुपाद ने क्या किया, देखिए भगवान जगन्नाथ की स्थापना कितनी सरल ढंग से हो रही है। जैसे हवन होता है ना, तो हवन की जगह उन्होंने क्या कराया, एक माला जप कराई सबके साथ। तो ये जो है ना यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें जप यज्ञ, तो प्रभुपाद ने जप कराया। तो इसमें हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवन कुंड बने हुए हैं सबके दो दो, ये जो दो कान हैं ये हवन कुंड नहीं है, तो इसमें जो हवन सामग्री है वो भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। हवन सामग्री क्या है? ये शब्द हरे कृष्ण महामंत्र के। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है यज्ञ कराया, एक माला का जाप कराया सबके साथ में। तब उन्होंने हयग्रीव से श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड से भगवान चैतन्य के जीवन चरित के अंश सस्वर पढ़वाए। हयग्रीव ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का कुछ अंश पढ़ा, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का दिन था और वो समय भी था। किंतु बहुत से भक्त पूंग रहे थे, बावजूद इसके कि हयग्रीव ऊंचे स्वर में शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहा था। यद्यपि प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनके साथ बैठकर भगवान चैतन्य के विषय में सुने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ऊंग रहे हैं तब उन्होंने पाठ बंद करवा दिया और फिर कीर्तन कराया। उसके पश्चात वे सबके साथ लगभग 15 मिनट तक जप करते रहे। तो अगर नींद आए कथा में तो फिर क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद ने कि सब को नींद आ रही है कथा में, तो उन्होंने फिर कीर्तन कराया और उसके बाद फिर 15 मिनट तक जप कराया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा हम फिर पढ़ेंगे। देखा, प्रभुपाद को सब विधियां पता है। लोग सो रहे हैं तो उनकी नींद भगाने के लिए कीर्तन कराया, फिर 15 मिनट जप कराया, फिर कहा कि अब हम फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रभुपाद कहते हैं कौन पढ़ेगा? लीलावती का हाथ झट उठा। बहुत अच्छा, उन्होंने लीलावती को अपने पास बैठा लिया और किसी ने उसके सामने माइक्रोफोन रख दिया। लीलावती का पाठ हयग्रीव के गंभीर लहजे से बहुत भिन्न था, लेकिन उसके स्वर में दूसरे प्रकार की विद्वत्ता झलकती थी। उसके संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के सावधानीपूर्वक किए उच्चारण से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई बार टिप्पणी की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लीलावती गदगद हो गई और हर एक को जागृत रखने के निश्चय के साथ वह मनोयोग पूर्वक पढ़ती गई। तो प्रभुपाद जी जो है प्रसन्न है लीलावती से, क्यों? क्योंकि लीलावती जो पढ़ रही हैं तो साथ साथ वो सबको जगाना भी चाहती हैं। ऐसे नहीं है कि बस सत्यनारायण की कथा पंडित जी अपना पढ़ करके अपनी पोटली जो है ना बांधते हैं और आटा है चावल है वो बांध करके अपना दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह की कथा थोड़ी है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे देखना है कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो लीलावती और हयग्रीव में ये अंतर है। हयग्रीव जब पढ़ रहे थे, हालांकि जोर जोर से पढ़ रहे थे, स्पष्ट पढ़ रहे थे, लेकिन भक्त लोग सो रहे थे और वो पढ़ते जा रहे हैं। लीलावती से प्रभुपाद विशेष प्रसन्न है, क्योंकि वो जब पढ़ रही हैं तो सावधानी पूर्वक उच्चारण कर रही हैं संस्कृत के शब्दों और वाक्यांशों को, और और हर एक को जागृत रखने के निश्चय के साथ वो पढ़ रही हैं, जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उस संध्या बेला में भक्तों और हिप्पी अतिथियों से कमरा खचाखच भर गया। प्रभुपाद उपस्थित थे और सबकी चित्तवृत्ति में श्रद्धा और उल्लास था। ये एक विशेष अवसर था। सद्या निर्मित विग्रह, सद्या निर्मित मतलब हरि बोल, सो रहे हो? सद्या निर्मित का अर्थ है अभी हाल में बने हुए, कहीं से मंगाए नहीं गए बल्कि वहीं श्याम सुंदर के द्वारा बनाए गए थे। यह निर्मित विग्रह अपने रेड वुड शेल्फ पर अब स्थित थे और उनके ऊपर केसरिया रंग का चंदोबा टंगा था। सभी लोग उनको देख रहे थे, उनके अंग प्रत्यंग तीव्र प्रकाश से आलोकित थे। वे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित नहीं थे बल्कि चमकीले श्याम, रक्त, श्वेत, हरित, पीले और नीले रंगों से अभी अभी उनका अनुरंजन किया गया था। तो यहाँ सबसे पहला जो जगन्नाथ जी का मंदिर जो स्थापित हो रहा है, तो उसमें जगन्नाथ जी को वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं। देखो ना प्रभुपाद जी कैसे लोगों के बीच में है, जो बिल्कुल जो है कोई संस्कृति ही नहीं, वे कुछ नहीं जानते हैं, है कि नहीं। तो कपड़ा नहीं पहनाया है जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव को, लेकिन कई रंगों से जो है ना उनको सजाया गया है। चमकीले रंग है, एक तो श्याम रंग है, एक रक्त यानी लाल रंग, सफेद रंग, हरा रंग, पीला रंग और नीला रंग, इन रंगों से रंगा गया है जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी उनकी ऊंची वेदी पर दृष्टि टिकाए हुए उनका अवलोकन कर रहे थे। प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य में वर्णित चार सामाजिक और चार आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भाषण किया। चार सामाजिक विभाजन और चार आध्यात्मिक विभाजन प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत जो है ना जो सरल बातें हैं वो समझाना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है। चार आध्यात्मिक विभाजन क्या है मानव समाज के, चार आध्यात्मिक विभाजन, चार आध्यात्मिक विभाजन है ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, और चार सामाजिक विभाजन, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि अपने गुण और कर्म के अनुसार हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक धर्म होता है, किंतु उस धर्म का अंतिम लक्ष्य उन्होंने कहा परमात्मा को संतुष्ट करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीच जाति में या गरीब पैदा हुआ है। तो प्रभुपाद ने क्या भाषण दिया कि नीच और जो है ना नीच और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जो है दृष्टि, भगवान की दृष्टि कैसी होती है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। आध्यात्मिक विकास का संबंध आपकी प्रतिभा से है, आपकी क्षमता से है, आपके कार्य से है, जिसमें आप परमात्मा को संतुष्ट करते हैं। प्रभुपाद ने श्रीधर का उदाहरण दिया, जो भगवान चैतन्य का एक गरीब भक्त था। वो हर दिन 5 सेंट से कम कमाता था। तो प्रभुपाद उनकी भाषा में बोल रहे हैं 5 सेंट से कम, मतलब यहां की भाषा में कितना था, 4 पैसा, 4 पैसा था ना, 4 पैसे उनकी आमदनी थी, तो 2 पैसा वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे और 2 पैसे में अपना निर्वाह करते थे। इस पर भी वो अपनी कमाई का आधा भाग गंगा जी की आराधना में लगा देता था, है ना। तो ये है महानता। यदि कोई अमीर है तो उसे भी अपनी संपत्ति का आधा भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। भगवान इस प्रकार से समता देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आमदनी अगर 10 लाख है तो 5 लाख रुपया भगवान की सेवा में लगाए, और किसी व्यक्ति की आमदनी 10 पैसा है तो 5 पैसा भगवान की सेवा में लगाता है। तो भगवान की दृष्टि में दोनों क्या है, बराबर। भगवान कहते हैं देखो दोनों 50% दे रहे हैं, दोनों दोनों मेरे अच्छे भक्त हैं, है ना। तो ये घटना ऐसी है